ஓம் சாந்தி. ज्ञान सागर बाबा की ये वरदान भूमि है। हरिद्वार में तो लोग जाते हैं गंगा नहाने के लिए, कोई सवेरे जाते, कोई शाम को जाते, कोई दिन में डुबकी लगाते, कोई 5-7 मिनट ही डुबकी लगाते, कोई घंटा आधा घंटा लगा लेते, 2 घंटा जरा गंगा के किनारे बैठ लेते हैं। गंगा का पानी इतना ठंडा होता है, होगा ना आप सबको भी अनुभव, कईयों को जो ज्यादा देर तो उसमें बैठ नहीं सकते, पांव भी ज्यादा देर नहीं डाल सकते हैं, बहुत ठंडा पानी होता है। लेकिन ये ज्ञान सागर बाबा का घर है, जहां 24 घंटे दिन और रात, सागर कहें, ब्रह्मपुत्रा कहें, गंगा कहें, यमुना सरस्वती कहें, सब नदियों का प्रवाह चलता ही रहता है, चलता ही रहता है, चलता ही रहता है, और उसी का प्रत्यक्ष प्रमाण है। क्या प्रत्यक्ष प्रमाण है, क्या प्रमाण है? हम बाबा के बच्चे नदियों में, सागर में डुबकी लगाते ही रहते, लगाते ही रहते, लेकिन आनंदित होते रहते हैं, थकते नहीं हैं। थक जाते हैं, कौन कौन थक जाते हैं, हाथ उठाओ तो। कोई नहीं थकते हैं, थक जाते हो? तो हम बाबा के बच्चे थकते नहीं हैं। इसका कारण यही है कि ये जो निरंतर एक शक्ति का, एक प्रेम का, एक स्नेह का, कल्याण की भावना का जो प्रवाह है, ये प्रवाह हमें भी शक्तिशाली बनाता है, हमारे अंदर उमंग भरता है, हमारे अंदर उत्साह भरता है। तो विचार कीजिए, आप बाबा के बच्चे कितने भाग्यवान बच्चे हैं, जिनका एक 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 सेकंड, एक एक श्वास बस उस सागर में, वो नदियों में डुबकी लगा ही रहा है, लगा ही रहा है, या कहीं कहीं और भी निकल के थोड़ा चले जाते हो कि थोड़ा सा चलो, अब सवेरे से बात नहीं की, अब दोपहर को फ्री हुए, चलो जरा सा तो घर में बात कर लूं। किस किस को घर याद आ रहा है, बाल बच्चे याद आ रहे हैं, क्योंकि आज का हमारा इस समय का जो टॉपिक है वो थोड़ा मुश्किल है, मुझे ही मुश्किल लग रहा है, हैं? मुश्किल है ना? क्या बोला टॉपिक बहन ने, नष्टो मोहा, मुश्किल है ना? क्या विचार है माताएं, जो कहते हैं आसान है वो हाथ उठाओ। थोड़े से माताएं उठा रही हैं, अच्छी बात है, और जो कहते हैं कठिन है वो हाथ उठाओ। कठिन वाले भी तो हाथ उठाओ, उठाते नहीं है। ये कठिन भी है, आसान भी है। कठिन है जब हम ये शब्द सुनते हैं, नष्टो मोहा, गीता में भी है, नष्टो मोहा स्मृति लब्धा, अपने मन का सारा मोह नष्ट कर दे और अपने मन को एक मेरे में लगा दे, बहुत मुश्किल है। कल शाम को भी हमने चर्चा की थी, आजकल हमारा मोह भी अपडेटेड है, हाँ, केवल बाल बच्चों में नहीं है, बहुत सी चीजों में है। तो इस अपडेटेड मोह से तो छुटकारा पाना और भी मुश्किल है, पहले वाले से थोड़ा आसान था, अब तो मुश्किल है। اتنا دنیا کا گلیمر ہے، اتنی چکا چوند ہے، کوئی بڈھا ہو یا جوان ہو، چھوٹا ہو یا بڑا ہو، نشتو موہا بھائی، یہ تو بہت مشکل ہے، مشکل ہے نا. ہم سب کو ایک پرکار سے ایڈکشن ہو گیا ہے. جیسے وہ لوگ ایڈکشن سمجھتے ہیں، جیسے شراب پینے والے کو وہ عادی ہو جاتا ہے، عادت ہو جاتی ہے، کوئی بھانگ وغیرہ کھاتے ہیں، کوئی ایسی چیزیں لیتے ہیں تو اس چیز کے وہ عادی ہو جاتے ہیں، وہ سمے آتا ہے تو اس کو چاہیے ہی چاہیے، نشہ کرنا ہی کرنا ہے. چائے کا بھی نشہ ہے، چائے کا ٹائم ہوگا، گھڑی دیکھیں نہ دیکھیں سر درد چالو، کہیں گے مجھے چائے نہیں ملی تو سر درد چالو. موہ بھی ایک ایڈکشن ہے کہ نہیں ہے؟ چاہے اپنے بچے ہوں نہ ہوں، جو ایڈاپٹ کیا ہوا بچہ ہوگا نا، اسی میں موہ چلا جائے گا. بھائی بہن کے بچے میں موہ جائے گا، پڑوسی کے بچے میں موہ جائے گا. اپنے بچے نہیں ہیں تو دوسروں کے بچوں سے ہی کہتے ہیں ہم کھیل کے اپنا من بہلا لیتے ہیں. مانا موہ دیکھیے ہمیں کس پرکار سے کھینچتا ہے. تو بھائی یہ تو بہت مشکل پارٹ ہے. آپ کہیں گے دیدی آپ کو ہی مشکل لگ رہا ہے تو پھر ہمیں تو چھٹی ہے. آپ سب کو تو چھٹی ہے نا، گھر گرستی میں رہتے ہو، اچھی طرح سے موہ کے بندھن میں رہو. تو نہیں، آج میں سویرے سے سوچ رہی تھی کہ کیا کیا جائے. ایک ہے ٹاپک کے دو حصے ہیں، ایک ہے نشٹو موہا، دوسرا ہے سمرتی سوروپ. جیسے کسی چھوٹے بچے کے ہاتھ میں اگر چاقو، بلیڈ یا کینچی آ جائے، آپ سوچتے ہیں کہ اب یہ بچہ تو اپنا ہاتھ، ناک، کان کچھ نہ کچھ کاٹ لے گا. بھائی اس کے ہاتھ سے چاقو لیتے ہیں تو بچہ رونا شروع کر دیتا ہے، اور نہیں لیتے ہیں تو کہیں غلطی سے آنکھ میں ہی نہ لگا لے، ہاں کہیں اور نہ لگا دے کسی اور کو نہ، کیونکہ چھوٹا بچہ ہے. تو آپ کیا کرتے ہیں؟ کیونکہ ہم یہ بھی نہیں چاہتے کہ وہ بچہ روئے، کیونکہ بچہ بہت لاڈلا ہے، پیارا ہے، ہم اس کو رلانا بھی نہیں چاہتے، لیکن چاقو جو خطرناک چیز ہے وہ بھی لینا چاہتے ہیں. مان لیجئے اس کے ہاتھ میں کوئی ایسا کھلونا ہے، کوئی کانچ کا یا ویلیویبل، آپ کو لگتا ہے یہ توڑ دے گا، تو آپ کیا کرتے ہیں؟ یہ نہیں کہتے کہ اس کو ٹچ نہیں کرو، لیکن آپ سوچتے ہیں کہ اب اس کو کیسے بچایا جائے. اسی طریقے سے بابا ہمارا ستیہ مات پتا ہے، ستیہ شکشک ہے، ست گرو ہے، اور وہ مات پتا ہم بچوں کو کہتا ہے تم میرے لاڈلے سکل دے بچے ہو. آج سویرے بھی بابا نے کہا نا، کل بھی کہا، میں تو تم چلو نہ چلو، ہاں بابا کیا کہتا ہے، بچے میں تو لینے آیا ہوں. کئی بار بابا مرلیوں میں کہتا ہے بچے پیار سے نہیں چلو گے تو ناک سے بھی پکڑ کے لے جاؤں گا، کہتا ہے نا بابا. تو بابا کا پیار ہم بچوں پر اتنا ہے کہ ہم اگر اس سے چھوٹنا بھی چاہیں تو چھوٹ نہیں سکتے ہیں. کہتا ہے تم مجھے مانو نہ مانو، جو گیان نہیں بھی سنیں گے، جو سنیں گے ان کو جیون مکتی، جو نہیں سنیں گے ان کو بھی مکتی دھام میں تو لے ہی جاؤں گا. تو بھگوان کا بھی اپنے بچوں سے اتنا موہ پیار ہے، اس لیے وہ کہتا ہے اچھا آپ نشٹو موہا نہیں بن سکتے، کوئی بات نہیں. کئی بار ہم اپنے موہ کو بھی چھپانے کے لیے پھر اور کچھ، نہیں نہیں ہمارا اتنا موہ تو نہیں ہے، پر بہن جی گھر میں رہتے ہیں نا تو نبھانا تو پڑتا ہی ہے. نہیں ہمارا تو اتنا آکرشن نہیں ہے، نہ اپنی بیٹیوں میں ہے نہ بیٹوں میں ہے، لیکن کیا کریں، ساتھ میں رہتے ہیں تو تھوڑا دھیان دینا پڑتا ہے. چلو اب آج سے ہمیں یہ بات کو چھپانا نہیں ہے، جھوٹ نہیں بولنا ہے، وہ ہے تو ہے، ہے تو ہے، کیا کریں. پر ایک کام اور کرنا شروع کرو. کیا کرو؟ تو آج ہمارے ٹاپک کا دوسرا حصہ ہے سمرتی سوروپ. بابا نے کہا بچے تم سمرتی سوروپ بنو. موہ سے ہمیں کیا کیا ملتا ہے جانتے ہو نا؟ کیا کیا ملتا ہے موہ سے؟ ہمیں دکھ ملتا ہے، اشانتی ملتی ہے، الپکالین خوشی ملتی ہے. بچہ ہے تو خوش، مر گیا تو دکھ. बीमार हो गया तो चिंता, पति पत्नी का प्यार है आज बनती है तो बहुत खुश, डाइवोर्स हो गया तो एकदम डिप्रेस, मर गया तो और भी ज्यादा जीना ही जैसे खराब हो गया। तो मोह में हमें क्या प्राप्तियां हैं, जो कहें अल्टीमेट अंततो गोतवा, मोह में फंसा हुआ व्यक्ति डिप्रेशन की ओर ही जाता है। और अगर आप बुरा न माने तो एक सत्य बात बताना चाहती हूं, जो डॉक्टर भी कहते हैं, जो हम लोग भी महसूस करते हैं, आप जरा ये बात सुनने के बाद गंभीरता से सोचना। अधिकतर 40 बरस के बाद की भाई बहने अपने को क्या महसूस करते हो, खुश या उदास? क्या कहेंगे, खुश या उदास? 50 तक पहुंचते पहुंचते तो एकदम हुलिया ही बिगड़ जाता है। बिगड़ता है नहीं बिगड़ता है? अब हंस तो सब रहे हैं एक दूसरे को देखकर एकदम। तो अगर मैं ये कह दूं कि 50 तक पहुंचते पहुंचते सब डिप्रेस हो जाते हैं तो शायद अतिशयोक्ति नहीं है। और अगर मैं कहूं कि आप सब भी डिप्रेशन में हैं तो अच्छा नहीं लगेगा, लगेगा। लेकिन कहीं ना कहीं किसी ना किसी कोने में आपके मन में कोई ना कोई उदासी छिपी हुई है। डिप्रेशन माना कहीं उदासी, कहीं अकेलापन, कहीं थोड़ा किनारा, कहीं किसी से कुछ ना कहना, ये सब डिप्रेशन है ना। कहीं थोड़ा अनमने मन से चुप चुप रहना, ये डिप्रेशन के साइन है। जब ये चीजें बहुत बढ़ जाती हैं तो कहते हैं ये व्यक्ति जो है डिप्रेस हो गया, दवाई चाहिए, तब हम डॉक्टर के पास जाते हैं। लेकिन जब थोड़ा थोड़ा रहता है तो उसको हम सहन करते रहते हैं। अब बाबा क्या कहता है, बाबा कहता बच्चे मोह का फल क्या है, मोह से प्राप्ति क्या है, वो तो आप सबने अनुभव कर ली ना सबने, वो तो अब अनुभव करने की आवश्यकता नहीं है। ये सब होते हुए भी हम नष्टो मोहा नहीं होना चाहते। तो बाबा कहता बच्चे कोई बात नहीं, आप इतने फंसे हुए हो फिर भी कहते हो मेरा बाबा, कहते हो सब मेरा बाबा या नहीं कहते हो? वो तो आप खुशी से फुल फोर्स से जोर से कहते हो मेरा बाबा। तो अब बाबा कहता है बच्चे जब आप कहते हो मेरा बाबा, तो मेरा बाबा कहने से आपकी जो दृष्टि है, आपकी जो वृत्ति है, आपका जो चित्त है, आपकी जो कृति है, ये कैसी हो जानी चाहिए, कैसी हो जानी चाहिए? बहुत श्रेष्ठ, शुद्ध, पवित्र हो जानी चाहिए। जैसे नए लोगों को हम सुनाते हैं मन बुद्धि संस्कार तीन आत्मा की शक्तियां हैं, उसमें माइंड माना मन और हार्ट दोनों अलग अलग है। मन में संकल्प है और हार्ट में ब्लड सर्कुलेशन है, ठीक है, मैं ठीक कह रही हूं? दूसरा है बुद्धि मस्तिष्क ब्रेन, एक है ब्रेन एक है बुद्धि इंटेलेक्ट, ये भी दोनों अलग हैं। ब्रेन में तो हमारी सारी शरीर की इंफॉर्मेशन आती हैं और इंटेलेक्ट जज करती है, निर्णय लेती है राइट है या रॉन्ग है। तो दो सूक्ष्म चीजें दो स्थूल चीजें। ब्रेन खराब हो जाता है, बुद्धि खराब नहीं होती है, हार्ट फेल हो जाता है, माइंड फेल नहीं होता है, समझ गए ना? हार्ट अटैक होता है, माइंड अटैक तो नहीं होता। लेकिन माइंड, मन और बुद्धि जो निर्णय लेते हैं, जो सोचते हैं, उनका प्रभाव ही तो हमारे हार्ट और ब्रेन पर आता है। और जब हम किसी चीज को बहुत 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 गहराई से सोचते रहते हैं, सोचते रहते हैं, सोचते रहते हैं, जिसको आप लौकिक दुनिया में कहते हो, इसके अंदर तो ना गम बैठ गया है, दहशत बैठ गई है, सदमा पहुंच गया है, यह है नेगेटिव। और एक है प्रभु प्रेम ज्ञान की बातें, गुण और शक्तियां हमारे अंदर भर गए हैं, ये है चित्त। जब वो पॉजिटिव है तो ये मेरा चित्त है, जो हम भक्ति में गाते आए, हे प्रभु मेरे अवगुण चित्त न धरो। तो हमारा मन और बुद्धि तो काम कर रहा है, अब इस चित्त को जागृत करो, क्योंकि चित्त के अंदर अनेक प्रकार की तेरी मेरी ईर्ष्या द्वेष इधर उधर की बातें अंदर में बैठी हुई हैं। तो हमारी स्मृति कौन सी है? वही दुनिया की। कई लोग जब बड़ी उम्र में आ जाते हैं कहते हैं भाई अब तो इसको सब कुछ भूल जाता है, अभी अभी खाया है भूल गया, अपनी चाबी कहां रखी है भूल गया, होता है ना 60-70 की उम्र में। अब उसी व्यक्ति को पूछो कि भाई तूने आज से 20 साल पहले फलाने को क्या दिया था, फलाने के बेटे बेटी, वो फट से बता देता है। अभी मैंने चाबी रखी वो तो भूल गया, लेकिन मेरे बेटे की शादी में 20 साल पहले इसने क्या दिया था वो उसको याद रहता है। होता है ऐसा? नहीं होता है, वो बातें नहीं भूलती है। 80 साल की उम्र में भी मेरी सासू ने ये किया, फलाने ने, ये याद रहता है। इसका मतलब क्या हुआ कि हमारा जो चित्त है वो गंदगी से भरा हुआ है, इसलिए मोह की दलदल में फंसा हुआ है। हम आगे भी यही कहते हैं अपने बच्चों को, बेटे बेटी बहू सबको, ये फलाना है ना, इसका शुरू से कभी हमारे से नहीं बनी, आप ध्यान रखना। माना उनको भी हम कहते हैं तुम भी नहीं उनसे बनाना, क्योंकि मेरे चित्त में दलदल है, कीचड़ है। अब इस चित्त को शुद्ध बनाना है। कौन कौन बनाएगा शुद्ध? कौन कौन बनाएगा? अलर्ट होके बैठो ना, ये जो जो बिल्कुल परम धाम में जा रहे हैं, जगाओ इनको जरा, ये आगे बैठे देखो कितना आराम से सो रहे हैं। अलर्ट होके बैठिए, सोइए मत, इतनी अच्छी आपको बात सुना रहे हैं। तो अपने चित्त को जगाना है। चित्त को जगाना माना, चित्त कब जागता है? जब हम प्रभु चिंतन करते हैं। चित्त का काम है, मन का काम है संकल्प करना, चित्त का काम है उसको गहराई में ले जाना। मान लो आपको संकल्प आया कि चलो हमारी भट्टी अब खत्म होने वाली है, इस बार हम घर की जगह फलानी जगह थोड़ा घूमते हुए जाएंगे, 3-4 है। मन में संकल्प आया, फिर आप कहते हैं अच्छा सोचते हैं, फिर आप थोड़ा अंदर गहराई से सोचते हो, फिर किसी से राय करते हो कहां जाएंगे, फिर वहां क्यों जाना है, किसी ने तो देखा कहते वहां ये चीज बहुत सुंदर है आप चलो तो सही। तो वो चित्त में बैठा हुआ है कि फलानी चीज बहुत सुंदर है। तो जो चीज हम देखते हैं, यूज करते हैं, बोलते हैं, सुनते हैं, वर्णन करते हैं, वो हमारे चित्त में प्रिंट हो जाती है। अब हमारे चित्त में केवल देहधारियों की बातें प्रिंट हैं, और देहधारियों का आकर्षण मोह कहलाता है, जो मोह हमें दुख देता है। हम इस दुख से छूटना तो चाहते हैं, लेकिन शक्ति नहीं है। तो बाबा ने कहा बच्चे प्रभु चिंतन करो। आप कहेंगे चिंतन से कैसे कटेगा? दुनिया में कहावत कौन सी है, अगर कांटा चुभ जाए तो, कांटा चुभ जाए तो, कांटा कांटे से निकलता है ना, पांव में कांटा चुभ गया तो फिर कांटे से ही निकलेगा ना, चाहे वो नेचुरल कांटा लो चाहे वो सुई लो, सुई भी तो एक मैनमेड कांटा ही है, कांटे से कांटा निकलता है। अब हम चिंताओं में डूबे हुए हैं और हमारा बाबा सुप्रीम टीचर बहुत कुशल टीचर है, वो भी कांटे को कांटे से निकालता है। माना अंदर चित्त में जो भरा हुआ है वो सोच रूप में, संकल्पों के रूप में भरा हुआ है, तो श्रेष्ठ संकल्प देकर वो जो उल्टे संकल्प हैं उनको खत्म करता है। तो आपको क्या दिया जाता है, कल रात को ही दे दिया गया, आज सवेरे दिया, क्या दिया, स्वमान। कई कई कहते हैं बहन जी ये स्वमान क्या है, कैसे करें? अभी क्लास में भी मैं शिव शक्ति हूं। अब कोई कोई फिर क्या करते हैं, कहते बहन जी मैं रोज 100 बार लिखती हूं, मैं शिव शक्ति हूं, मैं शिव शक्ति हूं, मैं शिव शक्ति हूं, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूं, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूं। आप लिखें या ना लिखें इससे मेरा कोई विरोध नहीं है, लेकिन बात लिखने की नहीं है, बात समझने की है। मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूं, इसका मतलब क्या है? पहले अपने अंदर जाओ, अब ये चिंतन करो, बैठो एक सेकंड, सीधा हो जाओ, सीधे होके बैठो और एक सेकंड सोचो, ये मास्टर सर्वशक्तिवान या मैं शिव शक्ति हूं किसको कहते हैं? तो आपको लगेगा शिव शक्ति माना है मैं एकदम अति सूक्ष्म आत्मा शिव बाबा के साथ, ये मुझे फीलिंग आए, पहले ये फीलिंग आए, फिर उस फीलिंग का अनुभव हो। जैसे आजकल आम का सीजन है, आपने आम देखा बड़ा सुंदर था, काटा, आपने कहा ये बहुत मीठा होगा, लेकिन जैसे ही आपने खाना शुरू किया आप कहेंगे अरे मैंने सोचा था बहुत मीठा है, आपको वो फीलिंग आई पहले, फिर आपने जब टेस्ट किया आपने कहा नहीं ये तो थोड़ा खट्टा है, बहुत मीठा नहीं, वो आपका अनुभव हो गया। अब मैं शिव शक्ति हूं, अब मुझे ये फीलिंग पहले आनी चाहिए। आम का स्वरूप देखा था ना, बड़ा सुंदर है, लग रहा है बहुत मीठा है, अब मैं शिव शक्ति हूं, मास्टर सर्वशक्तिवान हूं, ये फीलिंग आ गई। अब शिव शक्ति माना बलवान है या कमजोर है, कैसी होगी शिव शक्ति? भाई माताएं बहनें पीछे वाले, कैसी होगी शिव शक्ति? ऐसी कमजोर सी, ऐसे ऐसे गिरती पड़ती ऐसी होगी, या बैठी यहां है और चिंता घर की लगी हुई है, बैठी यहां है और ये शिव शक्ति हुई, मास्टर सर्वशक्तिवान हुई। मास्टर सर्वशक्तिवान का मतलब क्या है? स्थूल में भी अगर मैं कहती हूं मैं बहुत बलवान हूं, आप कहेंगे बहन जी मेरा ना ये छोटा सा बैग है, इसमें 2-3 किलो कोई चीज है, आप उठा लो। मैं कहूं मैं बलवान तो हूं पर मैं आपका ये 2 किलो का बैग नहीं उठा सकती, तो आप मानेंगे? आप कहेंगे आप तो अपने को बलवान समझते हो, केवल 2 किलो, मैं तो 10 किलो उठा सकती हूं। तो बलवान का मतलब है वो जो उसको उठा सके। मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूं। तो क्या अलबेलापन, आलस, इधर उधर के संकल्प मुझे अपनी तरफ खींच सकते हैं? अब सीधा होके बैठो, पक्का करो, बैठो बैठो सीधा होके, और ये पक्का करो मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूं। कोई भी कमजोरी का संकल्प, हाव भाव भावना, कोई भी कमजोर भावना मेरे अंदर नहीं। मैं एकदम मास्टर सर्वशक्तिवान। यह है विधि अपनी स्मृति को पक्का करने की। मेरी स्मृति काम करे। मैंने 100 बार लिखा काम नहीं कर रही तो क्या मतलब हुआ? उसका काम करने की विधि है मैं बार बार उसका अभ्यास करूं। मैंने लक्ष्य तो बनाया है, जो बाबा कहता है बच्चे लक्ष्य और लक्षण एक होने चाहिए। लक्ष्य तो मैंने बनाया है, मैं शिव शक्ति हूं। अब शिव शक्ति का मतलब शिव माना कल्याणकारी, मैं शिव की शक्ति हूं। मेरे अंदर कल्याण की भाव भावना भरी हुई है और मैं निर्भय हूं। शिव शक्ति दिखाते हैं ना देवियों को, दुर्गा को कैसा दिखाते हैं? तो मैं शिव शक्ति हूं। मैं किसी भी विघ्न से, किसी भी माया के वार से, किसी भी थोड़े बहुत संकल्प या व्यवहार से भयभीत हो सकती हूं। हम जल्दी से कहते हैं भाई मुझे तो डर लगता है, मैं नहीं इसको ये कह सकती। मैं शिव शक्ति, शिव माना कल्याणकारी, मानो मैं हर घड़ी शुभ भावना से, कल्याण की भावना से भरी हुई हूं, तो मैं आपको क्यों नहीं कह सकती? अगर शुभ भावना रखकर कोई गलत बात भी है और कहेंगे आप ये बात सही नहीं कर रहे, ऐसा करना चाहिए, तो कहने वाले के ढंग में भी फर्क होगा और सुनने वाला भी स्वीकार करेगा। और तानातुन की टॉन्ट किया, अरे तुम तो ऐसे हो वैसे हो ये, वो कहेगा जा जा अपना काम कर। मैं शिव शक्ति हूं तो मेरे चित्त में सबके लिए शुभ भावना हो, मेरे बोल में, मेरी वृत्ति में, मेरी दृष्टि में, मेरी कृति में शुभ भावना, कल्याण की भावना हो, और दिल दिमाग में हर घड़ी मैं शिव शक्ति हूं, शिव शक्ति हूं, शिव शक्ति हूं। तब हमारी ये स्मृति पक्की हो जाएगी। बाबा ने हमें कितनी स्मृतियां दिलाई हैं, ब्रह्मा बाबा को शुरू शुरू में जो साक्षात्कार हुआ, आपने भी बाबा की जीवन कहानी पढ़ी होगी, पढ़ी है सबने जीवन कहानी? जिन्होंने नहीं पढ़ी वो हाथ उठाओ। जीवन कहानी जिन्होंने नहीं पढ़ी, अगर जिन्होंने नहीं पढ़ी, थोड़े बहुत हैं, जरूर पढ़िए। उसके 2 पार्ट हैं, पहला पार्ट तो कम से कम जरूर पढ़ो। यज्ञ की स्थापना कैसे हुई, उस समय क्या क्या बाबा ने, मम्मा ने फेस किया, दीदी दादियों ने कैसे बहादुरी से परीक्षाओं को पार किया, तो बाबा को साक्षात्कार क्या हुआ? जो पहले हुआ, जो बाबा के घर में गुरु आया और बाबा उठ के अपने कमरे में आ गए और बाबा को साक्षात्कार हुआ, एक लाइट थी, एक माइट थी, एक लाइट थी, एक माइट थी। उस समय तक बाबा को कुछ अभी पता नहीं था, ये शुरुआत थी। जब बाबा से पूछा ब्रजेंद्रा दादी ने, तो बाबा ने कहा कोई लाइट थी, कोई माइट थी, कोई लाइट थी, कोई माइट थी। और बाबा की आंखें भी लाल लाल, और बाबा को वो नशा भी चढ़ गया, लाइट थी, माइट थी। और बाबा हमें क्या कहता है, बच्चे तुम कौन हो? कौन हो भाई आप बच्चे? कौन हो? कौन हो बच्चे आप? कौन हो? लाइट हाउस, माइट हाउस हो, कहता है बाबा या नहीं कहता है? कहता है, आप हो लाइट हाउस, माइट हाउस। लाइट हाउस माना पावर हाउस, मालूम है ना पावर हाउस, जहां से लाइट आती है। ये यहां मीटर लगे हुए होंगे ना, वहां भी शायद वो बोर्ड लगा हुआ होगा, 440 वॉट का वो डेंजर लगा होता है ना, वो हड्डियां सी और लिखा होता है डेंजर। और जो पावर हाउस होगा वहां तो कितना बड़ा बोर्ड होगा, डेंजर। और मैं कौन हूं? लाइट हाउस, माइट हाउस। कौन सा लाइट हाउस, माइट हाउस हूं? ज्ञान, योग, गुण, शक्तियों का। मैं बाबा का लाइट हाउस, माइट हाउस। जहां भी जाऊं, जो हमारे पास बैठे उसको वो वाइब्रेशन आए। होता है ना, कई बार आप कहीं बैठते हैं फिर उठ के जगह बदल लेते हैं, कहते वहां बैठी थी ना बहन जी, वो फलाना है ना, उससे बड़ी बदबू आ रही थी, मैं नहीं बैठ सकती। आप उठ गए। अच्छा, आपके पास बैठा हुआ व्यक्ति को यूं 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 हिल रहा है, आप कहते हैं ये क्या है, उठ के जगह बदल लेते हो। कहते ये हिलता है, मेरी कुर्सी को भी हिलाता है। आप बहुत अच्छा योग में बैठे हैं, आपके पास बैठा हुआ कोई सो रहा है, थोड़े से खर्राटे भी मार रहा है, आवाज कर रहा है, आप उठ के दूसरी जगह चले जाते हो। समझा मेरा भाव? पहुंचता है ना, बदबू भी पहुंचती है, वाइब्रेशन भी पहुंचता है। अब मैं लाइट हाउस, माइट हाउस हूं, तो मेरा कौन सा वाइब्रेशन आपको आना चाहिए? मैं लाइट हाउस हूं, मैं माइट हाउस हूं, तो मेरी भी पवित्रता की शक्ति, शांति की शक्ति, स्नेह की शक्ति, प्रेम की शक्ति, गुणों की शक्तियां आनी चाहिए ना। बाबा आप सब माताओं को क्या कहते हैं? बच्चे आप शिव शक्तियां हो, जगत माताएं हो, हो या नहीं हो, या अपने अपने एक दो चार बच्चों की ही मां हो, समझते हो हम जगत माताएं हैं? कौन कौन जगत माता है? हो जगत माता? हो तो पक्का करो, मैं लाइट हाउस हूं, माइट हाउस हूं, तो मेरे से क्या जाना चाहिए? क्या जाना चाहिए? शांति, पवित्रता, ज्ञान, प्रेम, स्नेह, धैर्यता, सद्भाव, शुभ भाव। एक एक गुण, एक एक शक्ति के पीछे नहीं लड़ना है। लाइट हाउस, माइट हाउस माना जो दे रहा है, हर घड़ी दे रहा है, देते रहिए। तो कैसे देंगे? जब ये स्मृति होगी मैं लाइट हाउस हूं, माइट हाउस हूं, तो मेरा लक्ष्य और मेरे लक्षण, कहूं मैं लाइट हाउस हूं और किसी से झगड़ा कर रही हूं, तब तो वो वाला डेंजर हो गया। वो वाला डेंजर नहीं बनना है। लेकिन मैं कौन हूं? मैं कौन सा लाइट हाउस, माइट हाउस हूं? ज्ञान, गुण, शक्तियां, प्रेम, सद्भाव, शुभ भाव। तो जो लक्ष्य वो लक्षण दूसरों को महसूस हो, तब कहेंगे स्मृति स्वरूप। बाबा ने हम बच्चों को निमित्त बनाया है। किस बात के? सत्युगी दुनिया की स्थापना के निमित्त बनाया है। मैं सत्युगी दुनिया की स्थापना के निमित्त आत्मा, सेवाधारी आत्मा हूं। तो सेवाधारी कैसा होना चाहिए? कैसा होना चाहिए? बहुत सरल, बहुत विनम्र, हर घड़ी। सेवाधारी क्या कहता है? आपके घर में नौकर होगा तो क्या कहता है? कहता है जी बीबी जी, अब बताइए और क्या करना है, ऐसे ही है ना जी। बाबा भी हमें क्या कहता है, मम्मा ने क्या किया, आ रहा है ना मम्मा का दिन भी 24 जून। मम्मा की पहली विशेषता, जिन्होंने देखा है या नहीं देखा है, यही सुनाते हैं कि मम्मा बाबा के आगे सदा कहती रही जी बाबा, जी बाबा। हम भी बाबा के बच्चे हैं, हम सेवाधारी हैं, तो हमारा भी स्वभाव कैसा होना चाहिए? कैसा होना चाहिए? विनम्र होना चाहिए। लेकिन वो कैसे होगा? जब ये पक्का होगा, मैं विश्व कल्याणकारी हूं, विश्व सेवाधारी, मेरी ये स्मृति पक्की हो, और अगर मैं यही समझती हूं कि मैं तो मालकिन हूं, मैं तो सासू हूं, मैं तो बहू हूं, तो वहां क्या होगा? वहां क्या होगा? आजकल क्या होता है फिर? आप क्या कहते हैं आजकल? पढ़े लिखे अनपढ़, गांव वाले शहर वाले, सबको एक शब्द आता है, और वो कौन सा है? कहते हैं ईगो, ईगो क्लैश, कहते हैं ना अहंकार, अभिमान। मैं सासू हूं, मैं बहू हूं, मैं मालकिन हूं, मैं नौकर हूं, हम भी तो काम करते हैं तो पैसा लेते हैं। आजकल अमीर गरीब, पढ़ा लिखा अनपढ़, सब में अभिमान है। तो बाबा ने क्या कहा, बच्चे तुम कौन हो? विश्व कल्याणी हो, विश्व सेवाधारी हो, जी। वैसे भी कहीं भी झगड़ा मिटाना हो तो क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? कहते हैं जी चलो हम ही छोटे बन जाते हैं, हम ही हाथ जोड़ लेते हैं, यही कहते हो ना? हमारी दादी दादी प्रकाशमणि जी कहा करती थी, हार मानी झंझट छूटा, हारमनी हाउस बना तो दादी अपना एक नया डेफिनेशन देती थी, हार मानी झंझट छूटा। ये तब हो सकता है जब हमारे अंदर ये भावना पक्की हो, मैं विश्व सेवाधारी आत्मा हूं, मैं विश्व कल्याणकारी हूं, ये स्मृति मेरी पक्की रहे। अब बताओ जो इसी कार्य में लगे रहेंगे तो आपका मन कैसा रहेगा? सारा दिन कैसा रहेगा? खुश या उदास? आपको रोना आएगा? फिर हमारी चाल कैसी हो? स्मृति स्वरूप चाल कैसी हो? कैसी हो चाल बताइए? चाल कैसी हो माताएं? हमारी चाल कैसी हो? चाल फरिश्तों जैसी हो। कहते हैं ना मनुष्य कैसे पहचाना जाता है? चाल से। दूसरा कैसे पहचाना जाता है मनुष्य कौन कैसा है, कहां का है, किस किस बात से पहचाना जाता है? एक तो चाल से, कैसा चलता है ना। दूसरा बोल से। बोल से आप कौन सी भाषा बोल रहे हैं? वो कहते हैं ना किसी को पहचानना हो तो क्या करना चाहिए, कोई गहरी नींद में सोया हुआ हो ना, उससे पूछो भाई फलानी चीज कहाँ है, तो वो कैसे बोलेगा जो उसकी ओरिजिनल भाषा है? गुजराती होगा, पंजाबी होगा, मराठी होगा, अंग्रेज होगा, वो अपनी भाषा में बताएगा तो आप पहचान लेंगे ये कौन है। तो जो उसकी ओरिजिनल भाषा है वो उस समय निकल आएगी। तो वाणी से मनुष्य पहचाना जाता है, चाल से मनुष्य पहचाना जाता है, और पहरावे से मनुष्य पहचाना जाता है। सबका अलग अलग है ना पहरावा। चाहे माताएं हैं, साड़ी ही पहनती होंगी, पर साउथ इंडियन की साड़ी, महाराष्ट्रियन की साड़ी, गुजराती की साड़ी, पंजाबी की साड़ी, रंग में भी फर्क है, बांधने में भी फर्क है, हेयर स्टाइल में फर्क या नहीं है, आप उसी से समझ जाएंगे। ये लग रहा है चाहे सफेद ही पहनी होगी ना, पर वो महाराष्ट्रियन ने वैसे ढंग से पहनी है, कहेंगे ये महाराष्ट्रियन है। वो साउथ वाला कोई होगा व्हाइट पहनेगा तो भी उसके ऊपर इतना बड़ा सा बॉर्डर पहनेगा, कहेंगे ये साउथ की है, देखो इसकी साड़ी। अब हम कौन है, हम कौन है, हमारी चाल कौन सी है, कौन है हम, बोलो। हम फरिश्ता हैं। क्या हमें सारा दिन ये याद रहता है मैं फरिश्ता हूं? तो फरिश्ते की चाल कैसी होगी, फरिश्ते का बोल कैसा होगा, फरिश्ते का खाना कैसे होगा, फरिश्ते का रहना कैसा होगा? तो अपनी स्मृति को श्रेष्ठ बनाने के लिए एक शब्द कहें तो एक शब्द है संकल्प। स्मृति का फाउंडेशन है संकल्प। अपने संकल्पों को श्रेष्ठ बनाएं। श्रेष्ठ कैसे बनाएं, उसके लिए बाबा ने हमें ये विधियां बताई हैं। कहते हैं भगवान को भी संकल्प आया। कौन सा संकल्प आया? मैं सृष्टि रचूं। तो ये सारी सृष्टि किसकी रचना है? संकल्पों की रचना है ना। तो केवल भगवान को संकल्प नहीं आया, हम सबकी अपनी अपनी सृष्टि है ना, सबकी अपनी अपनी दुनिया। कहते हैं ना ये तो अपनी दुनिया में मस्त रहती है भाई, और इसको तो दीन दुनिया का पता ही नहीं है, ये पता नहीं कहां रहती है। तो हम सबकी अपनी अपनी सृष्टि है। आपको कैसी सृष्टि चाहिए, सुख की या दुख की, खुशी की या गम की, लड़ाई झगड़े की या प्रेम की, विचार कर लीजिए, च्वाइस आपकी है। हाँ, आजकल फैशन है ना, मॉल में जाते हैं लोग, जो चाहिए वहां से खरीद के ले आते हैं। अभी मधुबन में आए ना, ये भी बहुत बड़ा मॉल है, आपको जैसी दुनिया चाहिए यहां से ले जाइए। सोच लीजिए, मुझे स्नेह प्रेम की दुनिया चाहिए, झगड़े की दुनिया चाहिए, प्रभु प्रेम की दुनिया चाहिए या चिंताओं की दुनिया चाहिए? बेगमपुर का बादशाह बेफिक्र रहने की दुनिया चाहिए या भिखारी पन की दुनिया चाहिए? कौन सी दुनिया चाहिए, सोच लीजिए, निर्णय कीजिए अच्छी तरह। आधे मन से मत करना, कई कई होते ना, हाँ ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, ये भी अच्छा है, ये भी अच्छा है, ये भी कर लो, ये भी कर लो, ऐसा कर सकते हो, कर सकते हो? आप बजाएंगे मार्केट में, सब्जी खरीदते हैं, फल खरीदते हैं, कपड़ा खरीदते हैं, अब जहां देखा सब फल है, आप डिसाइड करेंगे ना, मुझे घर में आज एक फल ले जाना है या दो ले जाने हैं, आम भी ले जाऊं, सेब भी ले जाऊं, ये भी अच्छा है, ये भी अच्छा है, रेट इसका भी ठीक है, इसका भी ठीक है, अच्छा फिर कितना ले जाना है, दो आम ले जाने हैं, किलो ले जाने हैं या चार किलो ले जाने हैं? किलो भी ठीक है, चार ले लो तो चार भी ठीक है, ऐसा चलेगा काम, बताइए। कपड़ा खरीदने गए, दो साड़ी खरीदनी थी और दुकानदार ने तो 50 खोल दी, आप कहेंगे ये तो सब अच्छी हैं, तो सब ले आओगे क्या? आप भी बाबा के घर में बहुत बड़े मॉल में आए हैं, यहां से दुनिया खरीद के ले जाइए। कौन सी, कौन सी दुनिया ले जाएंगे, सुख की या दुख की, खुशी की या उदासी की, आनंद की या झमेलों की, ईर्षा द्वेष की या प्रेम की, क्रोध की या स्नेह की? च्वाइस आपकी। भगवान को संकल्प आया दुनिया रचूं। संगम युग का समय है, हम दूसरों को कहते हैं कि संगम का समय चल रहा है जब भगवान नई सत्युगी दुनिया की स्थापना कर रहे हैं। तो केवल भगवान नहीं, भगवान ने निमित्त किसको बनाया है? निमित्त किसको बनाया है? हम बच्चों को। एक एक बच्चे की अपनी अपनी दुनिया है। आपको कौन सी दुनिया रचनी है, वही स्मृति वही संकल्प यहां कर लीजिए। कई बार बाबा कहते हैं बच्चे ये संकल्प एक तीली है, संकल्प की तीली लगाओ। तीली समझते हो ना? आजकल तो तीली का वो माचिस का रिवाज शायद खत्म हो गया है, लाइटर आ गए हैं आजकल तो। और तीली से आगे जलाते थे ना। बाबा कहते हैं दृढ़ता की तीली लगाओ, माना दृढ़ता का संकल्प करो। और कई बार आपने सुना होगा तीली जरा सी जलती हुई रह गई और उसके पास कोई कागज या कपड़ा पड़ा था, उसने आग पकड़ ली और वो आग सारे घर में, घर तो क्या, कई बार क्या होटल में लग गई, सारा होटल जल गया जरा सी तीली से। मेरा भी संकल्प रूपी तीली, दृढ़ता की तीली, पहले तो सोच लो मुझे देवता बनना है या नहीं बनना है, फरिश्ता बनना है या नहीं बनना है, सत्युग में चलना है या नहीं चलना है, मुझे सुख की दुनिया चाहिए या नहीं चाहिए। क्योंकि अभी हम एक जन्म की बात नहीं, ये जन्म तो गया सो गया, 84 जन्मों का भाग्य बना रहे हैं हम। सुख की दुनिया एक जन्म के लिए नहीं, 84 जन्मों के लिए। तो स्मृति स्वरूप बनेंगे, श्रेष्ठ स्मृति होगी, पावरफुल स्मृति होगी, तो हमारी दुनिया सुखमय दुनिया होगी। आप सब माताएं, चाहे हो सकता है किसी के घर में कोई झमेला हो, किसी का तन ठीक ना हो, किसी के घर में कहीं कोई घाटा पड़ा हुआ हो, अभी से आज से श्रेष्ठ संकल्प करो। हम बाबा के बच्चे हैं, कल्याणकारी हैं। एक मुरली में बाबा ने कहा तुम्हारा काम ही कौन सा है, ऑक्यूपेशन कौन सा है, तुम विश्व कल्याणकारी हो। मैं विश्व कल्याणकारी शिव शक्ति आत्मा हूं, मास्टर सर्वशक्तिवान। तो अब मेरे अंदर कौन सा चिंतन चलेगा, कौन सा चिंतन चलेगा? किस मेरे अवगुण चित्त ना धरो प्रभु। तो अब मेरा चिंतन सुख की दुनिया के लिए कौन सा होगा, इधर उधर का, तेरा मेरा? एक ही संकल्प बार बार दिल से कहना, ऐसे नहीं मैं शिव शक्ति हूं शिव शक्ति हूं, कोई राम राम की माला नहीं जपनी है। अंदर में वो भाव भावना आ जाए, सचमुच मैं शिव शक्ति मास्टर सर्वशक्तिवान, तो मेरी ये स्मृति बन जाए, मुझे इस पुरानी दुनिया का, कलयुगी दुनिया का कुछ नहीं चाहिए। चाहिए क्या कलयुगी दुनिया का कुछ? बाबा कहता है तुम्हारा ये मरजीवा जन्म है, जीते जी मर चुके हैं, हम भट्टी करने आए हैं, माना जीते जी मरना है। जीते जी मरना माना अभी जाके कोई पंखे से मत लटक जाना। जीते जी मरना माना मुझे इस दुनिया का कुछ भी नहीं चाहिए। क्या चाहिए आप बता दीजिए, आपको क्या चाहिए इस दुनिया का, क्या चाहिए? जिसको बाबा कहते हैं बच्चे इच्छा मात्रम अविद्या। बाबा कहता है बच्चे तुम मेरे बनो, मुझे याद करो, कौन कौन से वरदान दिए हैं याद तो करो, तुम्हारा जिम्मेवार मैं हूं, अपने बोझे मुझे दे दो। तुम तो क्या, तुम्हारे बच्चे उनके बच्चे भी भूख नहीं मरेंगे, है ना बाबा के महावाक्य? आप तो कमाएंगे तो कितना कमाएंगे, जितनी आप में शक्ति होगी, और बाबा को बोझा दे देंगे तो वो कितना देगा, वो कितना देगा, उसमें तो कितनी शक्ति है, कितनी शक्ति है, वो आपको कितना देगा, कितना देगा, इतना सा। तो बड़े दिल से बड़े बाबा को याद करो। क्या काम करेंगे बोलो, बड़े दिल से बड़े बाबा को याद करो, बड़े दिल से बड़े बाबा को अपना बना लो। तो हमारा दिल, हमारी बुद्धि सब बाबा के साथ, तो अपने आप ही नष्टो मोहा हो जाएंगे। हो गए नष्टो मोहा या नहीं हुए, हो गए या नहीं हुए, नहीं हुए तो आप बताओ नष्टो मोहा होना सहज है या मुश्किल है। अपने मन के संकल्पों का खेल है। बाबा कहते हैं स्मृति से समर्थि आएगी, श्रेष्ठ स्मृति से हम समर्थ बन सकते हैं। तो जब वरदाता हमें वरदान दे रहा है, वरदानों की तो यहां क्या है, लॉटरी लगी पड़ी है, निकालो अपनी अपनी लॉटरी। कैसे निकालेंगे, अब एक मिनट सीधा होके बैठो, एक मिनट सीधे होके बैठो और चलो अपने मन में संकल्प करना, मैं आपको थोड़ा बताती जाऊंगी, और फिर लॉटरी निकालना अपनी अपनी। मैं शुद्ध श्रेष्ठ पवित्र आत्मा मस्तक के बीचों बीच विराजमान, वरदाता भाग्य विधाता, सर्वशक्तिवान शिव बाबा के सामने मैं श्रेष्ठ आत्मा ईश्वर द्वारा प्राप्त गुण और शक्तियों की मालिक अधिकारी आत्मा हूं। वरदाता भाग्य विधाता शिव बाबा ने मुझ आत्मा को अखुट खजाने दिए हैं, वरदानों का भंडार दिया है। शांत चित्त दिव्य बुद्धि श्रेष्ठ संकल्प रूहानी दृष्टि, ये सब बाबा के दिए हुए वरदान हैं। वाह मेरे सत्य पिता, सत्य शिक्षक, सतगुरु शिव बाबा, कितना सम्मान आपने मुझ आत्मा को दिया है। अनेक प्रकार के सम्मान मेडल्स बाबा ने मुझ आत्मा को दिए हैं। मैं आत्मा होली हंस, मास्टर सर्वशक्तिवान, शिव शक्ति हूं, दिव्य बुद्धिधारी हूं, सदा निर्विघ्न, सदा विजयी आत्मा हूं, सदा सफलता मूर्त, श्रेष्ठ विशेष आत्मा हूं, दिल से प्यार से कहना शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। ढेरों वरदान बाबा ने दिए हैं, कौन सा वरदान मुझ आत्मा को विशेष बहुत अच्छा लगा? पहला ही संकल्प जो आया वह वरदान अपनी कॉपी में लिख लें। जिनके पास कॉपी नहीं उसको 5 बार अंदर दोहराएं ताकि वो वरदान आपका बन जाए। इस तरह से दिन में अनेक बार, 2 बार 4 बार नहीं, हर 1 घंटे के बाद 5, 10, 15 मिनट बाबा से वरदान लेकर झोली भर लो तो हमारी स्मृति श्रेष्ठ ऊंची बन जाएगी और आत्मा शक्तिशाली बन जाएगी। कमजोरियां बुराइयां अपने आप पीछे रह जाएंगी। कमजोरियों से लड़ने की आवश्यकता नहीं है, केवल बाबा जो दे रहा है उसको पकड़ने की आवश्यकता है। तो आप सब माताएं भी भाई भी बाबा के सपूत, आज्ञाकारी, स्मृति स्वरूप बच्चे बने, बाबा का नाम बाला करें। इन्हीं शुभ भावनाओं के साथ धन्यवाद। ओम शांति। अब यहां से जाएंगे भी बिल्कुल आवाज नहीं, भंडारे में भी नहीं, ऐसे नहीं खाना खाया ठाठा थाली गिराई बातें की ना फिर ये वरदान चला जाएगा। भक्ति में कहते हैं ना, जो मिला फिर बताओ नहीं, तो माना चुप रहना। जितना आप अभी अंदर ही अंदर इस वरदान को, यहां तो आपको मौका मिला है, अच्छी तरह लूट सके तो लूट ले। सतनाम की लूट, वरदानों की लूट हो रही है, लूटो। बस इसी को दोहराते रहो, मैं शिव शक्ति अनुभव करो और आवाज में नहीं आओ। ओम शांति।